अभिमन्यु को गायब हुए काफी समय हो चुका था। ऊपर से उसने नक्श के आदमियों को भी पकड़ लिया था। नक्श बार बार अपने आदमियों से अभिमन्यु के बारे में अपडेट लेने की कोशिश कर रहा था, पर उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता था। अभिमन्यु के इस तरह अचानक जाने और वापस न आने से नक्श का शक और भी पुख्ता हो गया था। ऊपर से उसके आदमियों को पकड़ने के बाद पृथ्वी ने उसे पार्टी के काम में भी उलझा दिया था। नक्श इस वक्त एक 7-स्टार लग्जूरियस होटल में पार्टी के अरेंजमेंट देख रहा था। ये पार्टी राजवंश एम्पायर के लिए काफी खास थी, इसीलिए नक्श वहां से चाहकर भी नहीं जा पा रहा था। रात को जब सब डिनर करने के लिए बैठे, तब नक्श होटल के बालकनी में खड़ा था। उसने तुरंत उर्वशी को कॉल किया और कहा, मॉम प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, चाचू आज सुबह से गायब हैं। ना वो कॉल अटेंड कर रहे हैं और ना ही किसी ने उन्हें देखा है। वो जरूर इशिका के पास गए होंगे। ट्रस्ट मी, इशिका जिंदा है मॉम। नक्श की आवाज़ की बेचैनी को महसूस करते हुए उर्वशी ने इसे उसके पागलपन के अलावा कुछ नहीं समझा, पर वो नक्श को सीधे सीधे छिड़क भी नहीं सकती थी। उर्वशी ने गहरी सांस ली और उसे प्यार से कहा, मैं तुम्हारी हालत को समझ सकती हूँ। ऊपर से तुमने एक गलत लड़की से शादी भी कर ली। अगर वो आज यहाँ होती तो कम से कम तुम्हें तो संभाल लेती। मॉम, मैं यहाँ आयशा की नहीं इशिका की बात कर रहा हूँ। मुझे आयशा से कोई लेना देना नहीं है। मैं इशिका से प्यार करता हूँ। मैं पहले उसके नाजायज बेटी होने की वजह से अपनी फीलिंग्स को खुलकर जाहिर नहीं कर पाता था, क्योंकि अच्छे से जानता था आप लोग शादी के लिए नहीं मानोगे। पर अब तो वो सिंघानिया फैमिली की जायज औलाद है। प्लीज अब तो मेरा साथ दीजिए, नक्श ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अब उसे एक उम्मीद बन गई थी कि उसे इशिका फिर से मिल जाएगी। नक्श का ये पागलपन उर्वशी की बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। वो गुस्से में चिल्लाकर बोली, बस करो नक्श, मैंने तब भी तुम्हें समझाया था और आज भी यही कह रही हूँ। वो लड़की मर गई है। अगर जिंदा भी है तो वो अभिमन्यु की पत्नी है और अभिमन्यु उसे खुद से अलग कभी नहीं करेगा। बस बहुत हो गया। हम लोग पार्टी के लिए यहाँ आए, तब तुम हमारे साथ वापस गोवा आओगे। हम फिर किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से मिलकर इस टॉपिक पर बात करेंगे। साइकेट्रिस्ट, नक्श ने अविश्वास से कहा। तो आपको लगता है मैं पागल हूँ? मुझे कहीं नहीं आना और एक दिन मैं ये साबित करके रहूँगा कि इशिका जिंदा है। अब उसी दिन बात करेंगे। नक्श ने गुस्से में कॉल काट दिया था। वहीं उर्वशी की बात अधूरी रह गई थी, इस वजह से उसे और गुस्सा आ रहा था। उर्वशी ने तुरंत नक्श को कॉल बैक किया तो पता चला नक्श ने उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। नकुल भी वहीं उसके पास कमरे में था, उसने भी उनकी बातें सुनी थी। उर्वशी ने नकुल की तरफ पलटकर कहा, जितना टाइम तुम अपनी नाजायज बेटी की तारीफ करने में बिताते हो उतना टाइम मेरे बेटे को दिया होता तो आज वो अभिमन्यु की पोजीशन पर होता। वो उस पोजीशन के लायक ही नहीं है। हाँ, अगर नायरा मेरी जायज बेटी होती तो जरूर वो अभिमन्यु की पोजीशन को हासिल कर सकती थी, नकुल ने सिर हिलाकर कहा, मानो उसे नक्श के इस पागलपन से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। उर्वशी को भी इन सबसे चिढ़ हो रही थी। वो गुस्से में बोली, आपकी उस लड़की बेटी के बारे में पूरा राजवंश खानदान जानता है कि वो कैसी है। दादी के कमरे के शोपीस तक उसने चुरा लिए थे। आपको लगता है कि इतनी बड़ी पोजीशन को एक चोर संभाल सकता है? उर्वशी की बातों ने नकुल को भी गुस्सा दिला दिया था। कुछ देर उनके बीच ऐसे ही बहस चलती रही और फिर नकुल वहां से चला गया था। उर्वशी कमरे के अंदर अकेली थी। उसने सर पकड़कर कहा, वो आयशा जैसी भी हो कम से कम मेरे साथ तो रहती थी। भले ही हम इशिका को पूरी तरह मात नहीं दे पाए, लेकिन इशिका की बेइज्जती करवाने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आयशा का ख्याल आते ही उर्वशी ने उससे मिलने का सोचा। आयशा ने कितनी भी गलतियां क्यों ना की हों, पर वो उर्वशी को खुश करने में लगी रहती थी। उर्वशी ने तुरंत मेंटल अस्पताल में कॉल करके आयशा से मिलने का अपॉइंटमेंट लिया। सब जानते थे कि आयशा पागल नहीं थी, ये तो अरमान का बदला लेने का नतीजा था कि वो पागलखाने में पहुंच गई थी। अगली सुबह युविका के घर पर एक आम सुबह की तरह अभिमन्यु और इशिका युविका के साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। रूही स्कूल जा चुकी थी। हाँ, वो इस बात से थोड़ी परेशान थी कि ईशानी वापस किसी काम के चलते बाहर चली गई थी। युविका को अब इशिका और अभिमन्यु से कोई शिकायत नहीं थी, फिर भी अभिमन्यु ने उसे होस्टेस बना रखा था। युविका ने गहरी सांस लेकर अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर राजवंश, आपको मुझ पर यकीन करना होगा। आप इस तरह कब तक मुझे कैद करके रखेंगे? लेकिन मैंने आपको नहीं बंद कर रखा है मिस चौधरी। आपको ये गलतफहमी क्यों है कि मैंने आपको होस्टेस बना रखा हूँ? आप चाहें तो तरुण दीवान की तरह हमें धमकी देकर पुलिस स्टेशन जाने का भी सोच सकती हैं, पर हाँ, बाद में क्या होगा इसकी गारंटी मैं नहीं लेता, अभिमन्यु ने बेझिझक कहा। उसकी बातें सुनकर युविका उसकी तरफ चिढ़न भरी नजरों से देख रही थी। उसने सिर हिलाकर कहा, अगर धमकी देनी है तो डायरेक्ट ही दीजिए ना। मैं कह रही हूँ कि रूही की वजह से मुझ पर पूरा यकीन है। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। बस एक दिन की बात है मिस चौधरी, फिर चले जाएंगे। अपने मेहमानों से ऐसे कौन बात करता है, अभिमन्यु ने बेपरवाही से कहा। पिछले दो दिनों से अभिमन्यु और युविका के बीच ऐसे ही नोकझोंक चलती रहती थी। उन्हें देखकर इशिका के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। अभिमन्यु इस तरह किसी से खुलकर बात नहीं करता था। इशिका ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, मिस्टर राजवंश पूरी तरह बदल गए हैं। कौन जानता था कि जो बच्चा बचपन में अपना नाम तक नहीं बताता था, बड़े बड़े होने के बाद वो अपने नाम का इतना फायदा उठाएगा। व्हाटएवर मिस्टर राजवंश, आपका ये टेंशन भी मुझे अच्छा लग रहा है। इशिका खोई हुई निगाहों से अभिमन्यु की तरफ देख रही थी कि तभी अभिमन्यु और युविका की नजर उसके ऊपर पड़ी। उसे इस तरह खुद की तरफ देखता पाकर अभिमन्यु एम्बेरस होकर अपनी नाक रगड़ने लगा था, तो वहीं युविका के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। अभिमन्यु की हालत देखकर युविका ने उसे टॉन्टिंग में कहा, लगता है मिस्टर राजवंश आपकी पत्नी को अभी तक ठीक से आपको देखने का मौका नहीं मिला, तभी जब देखो आपकी तरफ प्यार से देखती रहती है। ऐसा कुछ नहीं है मिस चौधरी, हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है, हम दोनों पिछले 2.5 साल से शादीशुदा है, अभिमन्यु ने उसे तुरंत जवाब देते हुए कहा। क्या सच में? लेकिन देखकर लगता नहीं, ऐसा लगता है जैसे दोनों की शादी कल की हुई है और वो भी अरेंज मैरिज है, जो दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ये तो आपको ऐसे देख रही है जैसे आपकी शादी 2.5 साल पहले नहीं 2.5 घंटे पहले हुई हो, युविका ने अभिमन्यु को परेशान करना जारी रखा। वहीं इशिका का ध्यान अभी भी उनकी बातों पर नहीं था। अचानक युविका के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ गई और उसने इशिका के सामने जोर से ताली बजाई, जिससे इशिका का ध्यान टूट गया था और वो एम्बेरस होकर इधर उधर देखने लगी। अभिमन्यु ने अपने चेहरे के भावों को सख्त किया और युविका को डांटते हुए कहा, मिस चौधरी आप क्या चाहती हैं, कि उम्र भर इस घर में आपको कैद होकर रहना है? नहीं मिस्टर राजवंश, आप तो इतनी सी बात पर नाराज हो गए, मैं तो मजाक कर रही थी, युविका ने तुरंत बात को संभालते हुए कहा। युविका की बातें सुनकर अभिमन्यु और इशिका को कहीं न कहीं वसुधा जी की याद आ गई, वो भी उन दोनों को ऐसे ही परेशान किया करती थी। युविका अचानक टेबल से उठी और इशिका की तरफ देखकर कहा, तुम चाहो तो अब अपने पति को आराम से देख सकती हो, वैसे तुम दोनों की जोड़ी अच्छी है और साथ में भी अच्छे लगते हो, तो इस तरह बोरिंग कपल की तरह क्यों रहते हो दोनों? तुम दोनों को देखकर कोई भी कह सकता है कि अब तक तुम दोनों हनीमून पर भी नहीं गए होंगे।
युविका की बात सुनकर इशिका का चेहरा लाल होने लगा था, उसकी नजरें झुक गई थीं। उसकी बदले हुए हावभाव देखकर युविका ने मुस्कुराकर कहा, चलो ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मैं कबाब में हड्डी बनने का काम क्यों करूँ, तुम दोनों अब एक दूसरे को आराम से देख सकते हो। इतना कहकर युविका अपनी प्लेट उठाकर जल्दी से चली गई थी, तो वहीं उसके जाते ही इशिका इधर उधर देख रही थी। कुछ देर बाद इशिका ने अभिमन्यु की तरफ देखा और धीरे से कहा, पता नहीं क्या बकवास कर रही थी ये। इस वक्त आसपास कोई नहीं था जिसके सामने अभिमन्यु को अपना सख्त लहजा रखने की जरूरत पड़े, इसलिए अभिमन्यु इशिका के नजदीक खिसका और उसे खींचते हुए अपनी गोद में बिठा लिया था। उसके इस हरकत पर इशिका के दिल की धड़कनें तेज होने लगी थीं। उसने अपनी नजरें नीचे कर रखी थीं। तभी अभिमन्यु ने उसके नाक पर हल्का सा किस करके कहा, वैसे वो कुछ गलत भी नहीं कह रही थी, अभी हम हनीमून पर भी नहीं गए और हमें देखकर ऐसे लगता है जैसे हमारी शादी कल की हुई हो, हमने अभी तक एक दूसरे को ठीक से टाइम भी नहीं दिया है। हाँ, क्योंकि हमारी लाइफ में चीज़ें नॉर्मल नहीं चलती ना, एक बार माँ मिल जाए फिर हम अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। आपके पास टाइम तो है मिस्टर राजवंश? इशिका ने उसे परेशान करते हुए पूछा। अभिमन्यु कुछ ज़्यादा ही बिजी रहता था। अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखकर सिर हिलाया और उसके कंधे पर सर रखकर धीरे से कहा, तो डॉक्टर मर्चेंट? नहीं, सिर्फ डॉक्टर मर्चेंट कहना गलत होगा, डॉक्टर अनामिका। मुझे ताना मार रही है कि मेरे पास टाइम नहीं है। आपके पास मेरे लिए टाइम होगा ना मिसेज राजवंश? जहाँ तक मुझे पता है आप अपनी कंपनी को पब्लिक करने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं, और एक बार ऐसा हो गया तो मुझसे ज़्यादा बिजी तुम रहने वाली हो। फिर भी मैं तुम्हारे लिए टाइम निकाल लूँगी, इशिका ने हंसकर कहा, जिस पर अभिमन्यु भी हंस पड़ा था। इस वक्त उन दोनों को कोई भी देखता तो यही कहता कि उनकी ज़िंदगी कितनी नॉर्मल है और दोनों पति पत्नी के बीच में काफ़ी प्यार है, पर सच कुछ और ही था। अभिमन्यु और इशिका ने इस रिश्ते के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया था, ऊपर से उनकी ज़िंदगी में मुसीबतें कभी कम नहीं हुई थीं। अभिमन्यु पूरे दिन बिजी रहता था, फिर भी उसने आज का अपना पूरा दिन इशिका के साथ में बिताना तय किया। उन्होंने अच्छा टाइम स्पेंड किया था, युविका रूही को संभाल रही थी और कहीं ना कहीं उसे इशिका और अभिमन्यु को अपनाने के लिए तैयार भी कर रही थी। अगले दिन राजवंश एम्पायर, सिंघानिया एम्पायर और जिंदल एम्पायर के बीच होने वाले एक बड़े प्रोजेक्ट के चलते एक बिजनेस पार्टी रखी गई थी। ये पार्टी काफ़ी ग्रैंड थी, जिसमें दिल्ली और बाहर से बहुत सारे बिजनेसमैन हिस्सा लेने वाले थे। अभिमन्यु को दिल्ली आए 15 दिन भी नहीं हुए थे कि उसने खुद को साबित कर दिया था। पार्टी से पहले अभिमन्यु इशिका के साथ युविका के घर पर ही था, वो गेस्ट रूम में तैयार हो रहा था। इस वक्त उसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था जिसमें वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। वहीं उससे अलग इशिका इस वक्त युविका के साथ थी। इशिका तैयार हो चुकी थी और उसने नेवी ब्लू कलर का गाउन पहना हुआ था जो शोल्डर लेस था। इशिका ने अपने बालों को पीछे बन में बांध रखा था, कुछ बाल जुड़े से बाहर भी बिखरे हुए थे। इशिका ये लुक काफ़ी गजब लग रहा था। इशिका ने तैयार होकर युविका की तरफ देखा तो युविका ने सिर हिलाकर कहा, मानना पड़ेगा तुम काफ़ी खूबसूरत हो, तुम्हें तो स्कूल और कॉलेज में काफ़ी प्रॉब्लम होती होगी ना, क्योंकि लड़के तुम्हारे पीछे पड़े रहते होंगे। इशिका ने नामे सिर हिला दिया था। उसका नक्श के अलावा कोई मेल दोस्त नहीं था। हाँ, नक्श उसे पसंद ज़रूर करता था, लेकिन उसकी जो सच्चाई थी उसे जानने के बाद कोई भी लड़का उसके करीब नहीं आना चाहता था। उसके नाम के आगे आदर्श सिंघानिया की नाजायज़ औलाद होने का ठप्पा जो लगा था। ऊपर से इशिका ने भी अपना सारा टाइम काम को दिया था। इशिका ने बात को बदलते हुए कहा, मुझे अपना करियर बनाना था, इसलिए मैंने इन सब चीज़ों पर कभी ध्यान नहीं दिया। चलो इसका भी एक फायदा है कि तुम किसी ऐसे वैसे लड़के के प्यार के चक्कर में नहीं पड़ी और अभिमन्यु राजवंश जैसा शख्स तुम्हारा पति है। बहुत जिद्दी, घमंडी, अकड़ू जैसा भी है, पर तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, चाहे बात उसके खुद की जान पर ही क्यों ना आ जाए। वो पहले तुम्हारे बारे में सोचेगा, युविका ने काफी पॉजिटिविटी के साथ कहा, जिस पर इशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इशिका ने काफी बेपरवाही से हल्के तरीके से कहा, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन अभी तक ऐसा मोमेंट नहीं आया कि मुझे बचाने के चक्कर में अभिमन्यु को खुद की जान दांव पर लगानी पड़े, और ना ही कभी ऐसा मोमेंट आएगा। बस एक बार मेरी माँ मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा और हम एक नॉर्मल लाइफ बिताएंगे। युविका ने उसके अच्छे भविष्य के लिए उसे गुड लक विश किया। इशिका जहाँ सब अच्छा होने की उम्मीद लगाए बैठी थी, वहीं उनसे अलग पार्टी में अर्पित और आदित्य अंजलि के साथ पहुंच चुके थे। उनके आदमी भी उनके साथ थे ताकि जरूरत पड़ने पर वो पूरी पार्टी को आराम से हाईजैक कर सके। हाँ, इशिका ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी में ऐसा लम्हा आएगा कि अभिमन्यु को खुद की जान की बाजी लगानी पड़े, लेकिन पार्टी में जैसा माहौल बन रहा था उसके बाद कोई नहीं कह सकता था कि किसकी जान जाने वाली थी या कौन खुशकिस्मती से बचने वाला था।